किसी ने वो रस्सा काट दिया। पहली बताओ ये रस्सो कौन काटे है? रावण सु राम जीत गो, साथ ही आधा सु ज्यादा काम बीत गो। जब भगवान स्टेज पर हाय सीता कहो, एक ऐसी सच्ची घटना जो मैंने मेरी आंखों से देखी कि जब भगवान स्टेज पर हाय सीता कहो तो एक युवक खड़े हो और हाथ जोड़ कहो, महाराज वीरा में व्याकुल और क्यों छाती ने चीरी है, सीता तो रावण के साथ पर्दा गैल ने बीड़ी पीरी है। जब भगवान स्टेज पर हाय सीता कहो तो एक युवक खड़े और हाथ जोड़ कहो, महाराज वीर में व्याकुल और क्यों छाती ने चीरी है, सीता तो रावण के साथ पर्दा गैल ने बीड़ी पीरी है। अंत में राम लक्ष्मण सीता से घर आया, बोलिया भारत में जन्म लेर बहुत दुख पाया। अंत में राम लक्ष्मण सीता से घर आया, बोलिया भारत में जन्म लेर बहुत दुख पाया। माँ भी बोली, बेटा थारा जाबासु बहुत कष्ट सया है, भाई भरत शत्रुघ्न तो अप्लायमेंट ऑफिस गया है। भाई बेरोजगारों की रामलीला थी। माँ भी बोली, बेटा थारा जाबासु बहुत कष्ट सया है, भाई भरत शत्रुघ्न तो अप्लायमेंट ऑफिस गया है, अब तू अहिया कर सीता का बाप ने कहे थोड़ो और दहेज दे, नहीं तो सीता ने नारी निकेतन भेज दे, नहीं तो सीता ने नारी निकेतन भेज दे। अति सुन सीता धरती में नहीं समाई, तेल छिड़कर बलगी। अति सुन सीता धरती में नहीं समाई, तेल छिड़कर बलगी। भूखा की रामलीला भूखा ने चल गई, भूखा की रामलीला भूखा ने चल गई, भूखा की रामलीला भूखा ने चल गई। ये मित्रों एक हास्य व्यंग आपको मैंने सुनाया। कुछ सच्ची घटनाएं हम लोगों के साथ में होती हैं, हास्य उन्हीं से पैदा हो जाता है। मेरे एक मित्र हैं दिनेश चेतानी, एक बार एक होटल में बैठकर वो 200 रोटी खा गए। भाई राजस्थान में जयपुर के रहने वाले थे, खा गए 200 रोटी खा गए। वहीं पास में सौभाग्य से एक सर्कस का डायरेक्टर बैठा था, बोला भाई साहब ये 200 रोटी का खेल आप हमारे सर्कस में दिखा दो, आपके इनकम हो जाएगी, हमारी भी इनकम हो जाएगी। बोले साहब दिखा देंगे। तो मेरे मित्र दिनेश चेतानी सर्कस में गए, डायरेक्टर ने उनको कहा वो 200 रोटी खा गए। डायरेक्टर बोला साहब मजा आ गया, 5 रुपए के टिकट 50 में बिक रहे हैं, आज तो आपके इस शो ने कमाल कर दिया, प्लीज आप एक शो और कर दो। दिनेश चेतानी फिर 200 रोटी खा गए। सर्कस का डायरेक्टर बोला साहब शहर की जितनी जनता थी सब टूट पड़ी सर्कस में, बोले आपके इस शो ने तो कमाल ही कर दिया, आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज एक शो और कर दो। दिनेश चेतानी फिर 200 रोटी खा गए। फिर सर्कस का मालिक आया कि साहब लाखों की कमाई होगी, आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी, प्लीज आप एक शो और कर दो। मेरे मित्र बोले यार आप भी कमाल के आदमी हो, मेरे से इस तरह शो ही करवाते रहोगे या घर जाकर मुझे खाना भी खाने दोगे? ये तो मित्रों मेरे मित्रों का व्यक्तित्व मैंने आपके सामने रखा। अब मैं छोटी छोटी हास्य व्यंग की क्षणिकाएं आपको सुनाऊं जिनमें हास्य के साथ मार्मिक व्यंग है। राजस्थान में मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरदेव जोशी, जो अपने एक हाथ के लिए मशहूर हैं। उन्होंने राजस्थान में पानी की समस्या खत्म करने के लिए करोड़ रुपए की योजना बनाई, हैंडपंप लगवाए, लेकिन एक भी हैंडपंप में पानी नहीं निकला, उसका क्या कारण था? सुनिए दो लाइन। बोलो नया हैंडपंप में पानी कोने के बात है, बोलो नया हैंडपंप में पानी कोने के बात है, मैं कई पानी कटासु अगो गजड़ो एक हाथ है। आज के शिक्षित युवकों पर एक व्यंग देखो कि देश की राजनीति शिक्षा ने अय को मोड़ दियो, एकलव्य बागर द्रोणाचार्य को अंगूठो तोड़ दियो। एकलव्य बागर द्रोणाचार्य को अंगूठो तोड़ दियो। आजकल के नेता लोगों की कैसी कर्मठता है, नेता लोगों का व्यक्तित्व, उनका करैक्टर कैसा हो गया। एक व्यंग देखो कि एक मृत नेताजी की आत्मा यमराज कन गई, यमराज बोलो नेताजी स्वर्ग लोगा या नरक। एक मृत नेताजी की आत्मा यमराज कन गई, यमराज बोलो नेताजी स्वर्ग लोगा या नरक। नेताजी बोला नरक ही ठीक है। हिंदुस्तान ज्या का राष्ट्र की संसद में बैठे रहो हूं, नरक में मन कौन सताओगो। कि हिंदुस्तान ज्या का राष्ट्र की संसद में बैठे रहो हूं, नरक में मन कौन सताओगो, स्वर्ग में सांचे गांधी जी चरखो कताओगो। लगते हाथ एक व्यंग में आपको सुनाऊं, जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ उस पर देखो कि त्रेता युग में के कई कील की जगह आंगली गाल रथ ने बचायो, और फिर दो वरदान मांगे कि त्रेता युग में के कई कील की जगह आंगली गाल रथ ने बचायो, फिर भी आंगली पर ही दशरथ ने नचायो। एक आंगली सारी अयोध्या की धूल उड़ा दी, जे आ सांच है तो कलयुग में कांग्रेस का हाथ में तो आंगली पांच है। शायद घर में ईमानदारी बनर होगी दिखे, दर्शनी नहीं दिया रेजगारी होगी दिखे। और कविता अपने असली रूप में आती है कि अचानक एक दिन हाथ मायो अखबार, अचानक एक दिन हाथ मायो अखबार पढ़ो, सरयाम पुलिस द्वारा हत्या सु पहली बलात्कार, जिन दिन सु मारो वह दिखे कालजा की परता चटकगी, बहु की आत्मा हिंदी भाषा बनर भटकगी, हिंदी भाषा बनर भटकगी, हिंदी भाषा बनर भटकगी। मैंने इस कविता में आपको पुलिस की एक बात बताई, एक पुलिस पर हंसाई देखिए कि सुनसान जंगल में एकली लुगाई ने डाकू मिल गा। वाह क्या बस मिल गए कि सुनसान जंगल में एकली लुगाई ने डाकू मिल गा, शिकार फंसते देख मनी मन खिल गा, डाकू छीना जप्ती करी लुगाई बहुत डरी, डाकू छीना जप्ती करी लुगाई बहुत डरी, डाकू बोलिया बटुओ गणो जरूर लूटांगा, जीवांगा चाहे मरांगा डरे मत, पुलिस की जिया नियत खराब नहीं करांगा। डाकू बोलिया बटुओ गणो जरूर लूटांगा, जीवांगा चाहे मरांगा डरे मत, पुलिस की जिया नियत खराब नहीं करांगा। एक कविता जिसमें एक बीमार कवि को स्वप्न आया और वो स्वप्न में ज्योतिषी बन गया। हमारे यहाँ जयपुर में हवा महल के नीचे इस प्रकार के कई ज्योतिषी बैठे रहते हैं, जो हाथ की या भाग्य की रेखाएं नहीं देखते। उनके पास एक पिंजरा होता है, पिंजरे में एक तोता होता है। कोई भी आदमी अपनी समस्या लेकर के आता है, वो उस तोते से कहकर पर्ची निकलवा कर उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। तो ऐसे ही एक बीमार कवि जिसको स्वप्न आया, स्वप्न में वो ज्योतिषी बन गया, उसके पास एक पिंजरा है, पिंजरे में तोता है, कई आदमी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और वो पर्ची से उनकी समस्याओं का निवारण करता है। ज्योतिषी की बात चल पड़ी तो मैं एक मेरे मित्र का सच्चा किस्सा बताऊं। मेरे एक मित्र है, वो एक ज्योतिषी के पास गए और बोले भाई आजकल मुझे शनि की दशा है, ज्योतिषी ने उनका हाथ देखा और बोले, आपको शनि की नहीं साथ साथ राहु की भी दशा है। मित्र ने पूछा ज्योतिषी से, भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्योतिषी बोला, आप ऐसा करो, मुझे 51 रुपए दो, मैं दोनों की दशा ठीक कर दूंगा। मित्र बोले, भाई वो भी कवि के मित्र थे, देख दाग कर बोले, भाई मेरे पास 51 रुपए तो नहीं है। ज्योतिषी बोला, ऐसा करो आप 21 रुपए दो। वो बोलो, भाई मेरे पास 21 भी नहीं है। तो ज्योतिषी ने कहा, चलो आप 11 रुपए दो। उन्होंने अपनी जेबें टटोली और कहा, मेरे पास तो भाई 11 भी नहीं है। तो ज्योतिषी बोला, अच्छा आपके पास 11 भी नहीं है, तो ऐसा करो आप मुझे मात्र 125 रुपया दे दो, मैं शनि और राहु की दोनों की दशा आपके 125 रुपए में ठीक कर दूंगा। मित्र बंधु ने अपनी जेबें टटोली और ज्योतिषी जी से कहा कि मेरे पास 125 रुपए भी नहीं है। तो ज्योतिषी जी बोले कि भैया ऐसा है, जब जेब में 125 रुपया ही नहीं है तो आराम से खाओ पियो मौज करो, शनि और राहु तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो कविता मैं आपको सुना रहा था, एक बीमार कवि जिसको स्वप्न आया और वो ज्योतिषी बन गया है, पिंजरा है पास में, उसमें तोता है, लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का निर्धारण वो पर्ची निकाल कर करता है। सुनिए साहब, कि लंबी बीमारी से पीड़ित कवि ने सपनाए और रात में वो विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी बन गए एक ही साथ में, पल भर में। कि लंबी बीमारी से पीड़ित कवि ने सपनाए और रात में वो विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषी बन गए एक ही साथ में। सपना में घराली पियर गई शेष आनंद हो, पर्ची निकालवाने पिंजरा में एक तोतो बंद हो। तो सबसे पहले एक नेताजी पग पकड़ बोला, महाराज कुर्सी और चमचा की दया सु और तो कोई दुख नहीं है, पर 40 बरस सु संतान सुख नहीं है। नेताजी पग पकड़ बोला, महाराज कुर्सी और चमचा की दया सु और तो कोई दुख नहीं है, पर 40 बरस सु संतान सुख नहीं है। नेताजी गदगद हो तुच्छ सी भेंट चढ़ा दी, ज्योतिषी का आदेश सु तो एक पर्ची आगे बढ़ा दी। पर्ची पर लिखेड़ो हो, चैन की सांस लो, दर दर मत भटको, काम कठिन है तो पड़ोसी की मदद से पार पटको। पर्ची पर लिखेड़ो हो, चैन की सांस लो, दर दर मत भटको, काम कठिन है तो पड़ोसी की मदद से पार पटको। अब की बार एक किसान जो खेती बाड़ी करतो, बोलो भगवान गरीबी निवारण करो। ज्योतिषी कही वत्स कुछ धीरज धरो, भेंट लेर ज्योतिषी कही वत्स कुछ धीरज धरो। तो फेर पर्ची निकाली, पर्ची पर लिखेड़ो हो, 5 वर्षों तक कष्ट और गरीबी के साथ रहोगे, 5 वर्षों तक कष्ट और गरीबी के साथ रहोगे। किसान कही फेर महाराज, फिर आदत पड़ जाएगी तो अपने आप सोओगे। अब की बार एक चित्रकार आयो, जो चित्र उतार कर प्रदर्शनी लगाता हॉल में और टिकट से पेट भरता। कि अब की बार एक चित्रकार आयो, हाथ जोड़ ज्योतिषी ने सारो दुखड़ो बतायो, प्रभु कई छोटी बड़ी चित्र प्रदर्शनी लगा चुके हो, कोई देख भाई नहीं आयो, बहुत धोखो खा चुके हो, मने भी बताओ कमाई को कौन सो सूत्र है, बेट की इया समझो आपको ही पुत्र है, बेट की इया समझो आपको ही पुत्र है। तो ज्योतिषी का आदेश तो पर्ची निकाली, पर्ची पर लिखेड़ो हो, चित्र प्रदर्शनी हाल के मुख्य द्वार पर प्रवेश निशुल्क का बोर्ड लटका लो, यानी अंदर जाना फ्री। पर्ची पर लिखेड़ो हो कि चित्र प्रदर्शनी हाल के मुख्य द्वार पर प्रवेश निशुल्क का बोर्ड लटका लो, अंदर की तरफ लिख दो निकलने के 20 रुपए और जबरदस्ती पटका लो। अंदर की तरफ लिख दो निकलने के 20 रुपए और जबरदस्ती पटका लो। और मित्रों, जिस बात के लिए मैंने कविता लिखी कि अब की बार एक डिग्रीधारी बेरोजगार नवयुवक आयो, अब की बार एक डिग्रीधारी बेरोजगार नवयुवक आयो, बिका हाल बेहाल देख ज्योतिष भी चकरायो, आंख भराई देख निराधार ने, राष्ट्र निर्माता नवयुवक और कर्णधार ने, युवक कही
पेट कई दिना सु खाली है न भरबा की आस है, सब कुछ आरक्षण खाएगो बस डिग्री ही पास है। युवक कही पेट कई दिना सु खाली है न भरबा की आस है, सब कुछ आरक्षण खाएगो बस डिग्री ही पास है। पर्ची खातिर ज्योतिषी का होठ बड़बड़ाया, तो पिंजरा के चोंच मार पंख फड़फड़ाया। ज्योतिषी कही जवान अब भी जाग जा, मेरो कर्णु मन तू तत्काल भाग जा। गौर सु सुन, दोनों कान खोल ले, पंजाब जार कफन की दुकान खोल ले। गौर सु सुन, दोनों कान खोल ले, पंजाब जार कफन की दुकान खोल ले। तेरे आगे कोई दुकानदार नहीं टिकेगा, भाग्य प्रबल है कफन खूब बिकेगा। भाग्य प्रबल है कफन खूब बिकेगा। माल पाछे दीजे पहली दाम दरवाजे, रेडियो टीवी पर दुकान को यूं प्रचार करवाजे। अब खुद की दुकान का एडवर्टाइजमेंट रेडियो टीवी पर किस ढंग से करवाएगा सुनिए कि छोटा मोटा हर प्रकार का कफना को एकमात्र स्थान। एक बार सेवा को मौको जरूर दो आपकी अपनी दुकान। गांधी जयंती का उपलक्ष्य में 20% कम कीमत है। गांधी जयंती का उपलक्ष्य में 20% कम कीमत है। तूफानी बम्पर सेल जल्दी करो, स्टॉक सीमित है। मारी दुकान को भविष्य थालोगा के हाथ है। दो बड़ा कफना की खरीद पर एक छोटो कफन साथ है। मारी दुकान को भविष्य थालोगा के हाथ है। दो बड़ा कफना की खरीद पर एक छोटो कफन साथ है। नौकरी को नाम ही मत ले, मोन ले ले। दुकान खातर शिक्षित बेरोजगारी को लोन ले ले। ये 10वीं पास लोगों को हमारे राजस्थान में बहुत मिलता है। नौकरी को नाम ही मत ले, मोन ले ले। दुकान खातर शिक्षित बेरोजगारी को लोन ले ले। युवक कही दलाला का फेर मैं पिस जाऊंगो, फौलाद थोड़ी हूं। लोन कौन देगो, मैं मिनिस्टर की औलाद थोड़ी हूं। युवक कही दलाला का फेर मैं पिस जाऊंगो, फौलाद थोड़ी हूं। लोन कौन देगो, मैं मिनिस्टर की औलाद थोड़ी हूं। अति सुनी आंसू आंसुओं को झरनो फूट गो, तन कांपियो एक कवि को सपनो टूट गो, एक कवि को सपनो टूट गो, एक कवि को सपनो टूट गो। वैसे तो पत्नी पीड़ितों के बारे में कई कवियों ने अपने अपने नजरिए से कहा। मैं भी आपको एक ऐसे पत्नी पीड़ित की कथा सुना रहा हूँ जो बेचारा टाइम से पहले मर गए। इससे पहले एक हंसाई देखिए कि तीखा नाक के नीचे कटार सी मूछ देखकर अंग्रेजी की शौकीन घराली बोली। तीखा नाक के नीचे कटार सी मूछ देखकर अंग्रेजी की शौकीन घराली बोली, मूछ तो वाकई वेरी फाइन है, मैं कही या तो स्पेशल चीज के नीचे अंडरलाइन है। तो उस पत्नी पीड़ित की मैं व्यथा आपको बताऊं जो बेचारा टाइम से पहले मर गया। देखने में आता है कि एक बच्चा अपने पिताजी से आकर के बोला, पिताजी जब जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मम्मी मुझे डांटती है, मेरे चांटा लगाती है कि बेटे अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि मुझसे बिना पूछे घर से बाहर जाओ। तो पापा आप मुझे बताओ ना, इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि मैं बिना पूछे घर से बाहर जा सकूं। उसके पापा बोले, बेटा इतना बड़ा तो आज तक मैं भी नहीं हुआ हूं। कविता देखो, कविता को शीर्षक है मिस्टर मुरारी। न कोई रोग न कोई बीमारी, बस यही चल बसे एक दिन मिस्टर मुरारी। न कोई रोग न कोई बीमारी, बस एक दिन यही चल बसे मिस्टर मुरारी। आगे मिले धर्मराज, देखते ही मुस्कुरायो, बोल मुरारी इतरो जल्दी के आयो। बोल मुरारी इतरो जल्दी के आयो। मुरारी बोले, हुजूर खुद के लिए नहीं मरियो, नहीं मरबा की सूरती, मेरो 2 लाख को बीमो और बीवी ने पीछे की जरूरत। मेरो 2 लाख को बीमो और बीवी ने पीछे की जरूरत। शादी की टेम बिशु वायदो करियो, तेरे लिए जान दे दूंगो। आज बा आपकी बात पर अड़ गई, बस मजबूरी में जान देनी पड़गी। आज भी आपकी बात पर अड़गी, बस मजबूरी में जान देनी पड़गी। धर्मराज बोलियो, मुरारी भाई आखिर एक बात समझ में कौन आई कि तू मरबा की कौन सी विधि अपनाई? मुरारी बोले, हुजूर आजकल मरबा के लिए फांसी का फंदा सुन ली लटकनो पड़े, बस शादी कर लो फिर कठे नहीं भटकनो पड़े। मुरारी बोले, अच्छा मुरारी बोलो, आजकल मरबा के लिए फांसी का फंदा सुनी लटकनो पड़े, बस शादी कर लो फिर कठे नहीं भटकनो पड़े, बस शादी कर लो फिर कठे नहीं भटकनो पड़े। बीवी और शादी सब्जियां धर्मराज के कानों में पड़िया, शरीर कांपे और रोंगटे हुए खड़िया। मुरारी बोलो, सर थे क्यों डर रहे हो? सृष्टि का कर्ता धरता और आंखें में पानी भर रहे हो? थे तो ईश्वर हो, गॉड हो, खुदा हो। धर्मराज बोलो, मुरारी आ तो सही है कि मैं ईश्वर हां, गॉड हां, खुदा हां, पर आ मत भूल कि मैं भी शादीशुदा हां। आज इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री टीवी सीरियल से ज्यादा नहीं चलता, नहीं तो इंटरटेनमेंट वैल्यू खत्म हो जाती है।